ओम शांति। तो हम पढ़ रहे थे अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1999 की बेहद की वैराग वृत्ति। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी, इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ अटेंशन दिला रहा है। हरेक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले होते हुए वैराग वृत्ति हो, साधनों में रहने वाले हैं होते हुए वैराग वृत्ति हो, आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद की का वैराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया, इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए हैं, संपर्क में आए, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है, बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो, इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा बल करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल अवश्य है। 18 जनवरी 1999 बाबा कह रहे हैं, वैराग वृत्ति की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं। हरेक से यह अनुभव हो, कौन सा अनुभव, कि यह साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले होते हुए बेहद वैराग वृत्ति हो, आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग वृत्ति से साधना के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना कौन सी है, बेहद की का वैराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया 99, इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए, संपर्क में आए, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है, बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है, सहयोगी भी कैसे बनाना है? कल की मुरली से तीन चीजें बताई थी कल रात, प्रेम की पालना, परिवार की फीलिंग और तीसरा संबंधों का रस। प्रेम की पालना, संबंधों का रस, परिवार की फीलिंग से आत्माओं को क्या बनाओ, सहयोगी बनाओ, स्नेही बनाओ, जो वीआईपी है उन्हें स्नेही और फिर बाद में संबंध में लाओ। अब उन सहयोगी क्वालिटी आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से क्या बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भल करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल अवश्य हो। तो एक है साधना, दूसरा है तपस्या और तीसरा है वैराग। बाबा ने कहा वायुमंडल तैयार करो। किसका वायुमंडल? साधना का वायुमंडल, तपस्या का वायुमंडल, बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल। साधना करने वाले हम सभी साधक हैं, तपस्या करने वाले हम सभी तपस्वी है और वैराग को धारण करने वाले हम सभी बेहद के वैरागी है। कल की मुरली में था जैसे ब्रह्मा बाप का जो अंतिम बोल, अंतिम संकल्प, इशारे की भाषा, उस संकल्प से क्या हुआ? वृक्ष निर्माण हुआ। तो हमारे एक एक संकल्प से भी ऐसा ही वृक्ष निर्माण हो सकता है। तपस्या का संकल्प, साधना का संकल्प, वैराग का संकल्प। जो देखे वो ये न कहे कि ये किसके वश है, साधनों के वश है। तो वायुमंडल कैसे तैयार करेंगे, लहर कैसे फैलाएंगे, कहां से चालू करनी पड़ेगी लहर, स्वयं से क्या करेंगे कि जिससे वातावरण में जो भी इस वातावरण में आए उसे इच्छा हो तपस्या करने की, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे, जो भी इस वातावरण में आए उसे स्वतः सहज वैराग आ जाए। तपस्या का फिर से उमंग जग जाए। शायद हो सकता है संसार के मार्ग में चलते चलते तपस्या कहीं खो गई है, वो जो तपस्या की आग है फिर से प्रज्वलित हो जाए। जो अंदर तपस्वी था मूर्छित हो पड़ा है फिर से जग जाए, अपने ही भीतर के तपस्वी को जगाना है, अपने ही भीतर के वैरागी को जगाना है। जो साधक साधना कर रहा था कहां गुम हो गया, फिर से साधना भक्ति का शब्द है, तपस्या भक्ति का शब्द है, वैराग भी भक्ति का ही शब्द है। ऐसी साधना फिर आरंभ करना है और लहर फैलानी है। तो शुरुआत कहां से करेंगे साधना की? स्वयं से। शुरुआत कहां से करेंगे तपस्या की? स्वयं से। हम बिंदु है, हम केंद्र है, हम यदि जगे हुए हैं तो हम नूर है, बाप के नूर, नूर रत विश्व की ज्योति। हम यदि जगे तो संसार में प्रकाश, हमारी ज्योति बुझी तो संसार में अंधकार। तो साधना का दीपक जगाना है, तपस्या का दीपक, साधना का दीपक और वैराग का वायुमंडल बनाना है। कैसे करेंगे ये सारी बातें, क्या करें कि जिससे ये सारी बातें हो जाए, क्या करें? इच्छाओं का त्याग कर दो और देहत का वैराग धारण कर लो और तपस्या करो और साधना करो। अब तपस्या कैसे करें और साधना कैसे करें और वैराग को कैसे धारण करें? बाबा ने यहां और एक बात कही है, साधनों के वशीभूत ना हो, उसके परिणाम को देखना। उस दिन भी कहा था वैराग को जीवन में लाने की विधि क्या है, एक है शमशनि वैराग, एक है परमानेंट शाश्वत वैराग। शमशनि वैराग है वो थोड़ी देर के लिए आता है, जब चिता को जलता हुआ देखते हैं वो मांस का लोथड़ा नजर आता है, धू धू कर जल रहा है, वो दिखाई देता है और फिर संकल्प आता है मन में कि एक दिन सबको जाना है, परंतु साथ साथ कुछ भावनाएं भी मन में उमड़ती है। जितना घनिष्ठ संबंध रहा होगा उससे उतना ही और दुख की भी भासना अंदर होती है, परंतु वो जो वैराग है क्षणिक रहता है। जैसे ही वहां से निकल कर आए वो वैराग राग में रूपांतरित हो जाता है, वो वाला वैराग नहीं, शाश्वत वैराग, जिसकी ज्वाला, जिसकी ज्योति धधकती रहे निरंतर। वो वैराग किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आएगा, वो व्यक्ति वो वैराग ज्ञान युक्त तो वैराग होगा। कल मुरली में कहा था ना, ज्ञान के आधार से स्नेही, केवल स्नेही नहीं, ज्ञान के आधार से स्नेही बने। तो ऐसा विवेक के आधार पर उत्पन्न हुआ वैराग निरंतर रहता है। जांच पड़ताल कर ली है, ये संसार ये भगवान, ये संसार का मार्ग ये परमात्मा का मार्ग, इस मार्ग पर चलने से क्या निष्पत्ति होती है, क्या मिलता है, और ये परमात्मा का मार्ग, इसको जांचा है, परखा है, समझा है। ऐसा विवेक युक्त जो वैराग है वो वापस संसार में, संसार के भोगों में रस बस नहीं जाता, फिर से ही वहीं पर आसक्त नहीं होता। ऐसा वैराग धारण करना है तो वैराग के लिए क्या चाहिए? विवेक, ज्ञान, ज्ञान युक्त वैराग, विवेक युक्त वैराग। ऐसा जो वैराग होगा वो शाश्वत होगा, क्षणिक नहीं, परिस्थिति जनित नहीं। किसी व्यक्ति से प्यार है और फिर उससे धोखा अगर हो जाए तो वैराग आता है, परंतु फिर कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढता है, व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति उसे चाहिए तृप्ति करने के लिए, परंतु इस संसार के सभी मनुष्य अपूर्ण है, ये वो भूल रहा है। इस संसार के सभी मनुष्य अपूर्ण है, पूर्ण एक परमात्मा है, अपूर्ण से पूर्ण की अनुभूति नहीं हो सकती। हमें तलाश, हमारी जो खोज है वो पूर्ण की खोज है, अनंत की खोज है। अनंत के सिवा आत्मा अनंत है, अनंत के अतिरिक्त आत्मा को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। व्यक्तियों से प्रेम करना और उनसे संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा अंततोगत्वा फिर से दुखी बनाएगी। एक व्यक्ति से दुख हुआ, उसको छोड़ा तो दूसरे व्यक्ति से प्यार, एक स्त्री से प्रेम किया उससे दुख, फिर दूसरी स्त्री को ढूंढा, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक पुरुष से धोखा तो दूसरे पुरुष को ढूंढा, सभी स्त्रियां और सभी पुरुषों से वैराग, ये वैराग की परिभाषा है। कोई भी तृप्त नहीं कर सकता हमको, जो तृप्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है वो मृगमरीचिका है, धोखा मात्र है, हम बहुत बड़े झांसे में हैं। तो अपने अंदर वैराग को लाने के लिए उस दिन भी कहा था, एक तो परमात्मा प्रेम में डूब जाओ और दूसरा दोष दृष्टि, इस संसार के प्रति दोष दृष्टि, संसार के मार्ग पे जाने से क्या होता है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि भागो, ये लोग अच्छे नहीं है इनसे भागो, वहां से छोड़ के यहाँ आ जाओ, किसी भी आश्रम में चले जाओ, अध्यात्म के पथ पर आ जाओ। सन्यासियों ने ये मार्ग अपनाया कि उनको छोड़ो, कोई किसी का नहीं है संसार में, फिर आश्रम में आगे, पर क्या आश्रम में भी कोई किसका है? ये भी तो वही मनुष्य है, उन्हीं मनुष्यों के तो बीच में आए, सभी चेतनाएं अपने अपने पथ पर है परिवर्तन के, किसी का पूरा परिवर्तन हुआ, किसी का कम परिवर्तन हुआ। उस दिन भी क्लास में बता रहे थे कि जो व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, सफर कर रहा है और ऊपर की बर्थ में सोया है, यदि वो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण आत्मा, बाबा का बच्चा, और सुबह 3 बजे उठ जाता है और दुखी होता है, ये बाकी लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं, इनको भी उठना चाहिए, जगे हुए तुम हो, उनके जगने का समय नहीं आया है, वो अपने टाइम पर ही जगेंगे, इसके लिए उनको सोने दो। हर एक के जगने का समय अपना अपना है, मदद जरूर कर सकते अगर वो चाहते तो, पर जबरदस्ती हम किसी को नहीं उठा सकते। कोई एक संस्कार हमें दुख दे रहा है, हमें वो पता चला और हम जग गए, फिर देखा दूसरे में भी वो संस्कार है और उसे भी दुख दे रहा है, हम चाहते हैं कि वो भी जग जाए, नहीं जगेगा। हर एक के जगने का समय अपना अपना है, इसके लिए वैराग भागना नहीं है कहीं से, क्योंकि जहां पर भागोगे अगर वो अपने नहीं है तो ये भी तो अपने नहीं है, कोई भी मनुष्य अपना नहीं है। हाँ, उस दृष्टि से अपना कोई नहीं है क्योंकि सबको जाना है, अकेले आए अकेले जाना है, उस दृष्टि से अपना कोई नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मनुष्य से भागना है, क्योंकि जहां हम भागेंगे वहां फिर नई आसक्तियां उत्पन्न होगी। इसके लिए हमारे अपने वैराग्य को चेक करना है कि वो व्यक्ति पर निर्भर ना हो, कोई परिस्थिति पर निर्भर ना हो, कोई बात के कारण आया हुआ ना हो। तो ऐसा वैराग का वातावरण, एक जब हमारे मन में वैराग होगा तो ही वो लहर फैलेगी। एक तो वैराग, दूसरा साधना का वायुमंडल बनाना है। साधना, अपना टाइम टेबल खुद बनाना है साधना का। एक तो इस ग्रुप में बनता है या मधुबन में बनते हैं प्रोग्राम, पर अपनी तपस्या का टाइम टेबल खुद बनाना कि मुझे क्या तपस्या करनी है। जनरल टाइम टेबल अलग, जनरल प्रोग्राम अलग, हमारा पर्सनल प्रोग्राम साधना का, क्योंकि मेरी जो कमियां हैं मेरे से अधिक और कोई नहीं जानता। दूसरे जो जानते हैं और कहते हैं वो अपने अपने संस्कारों के क्या कहते हैं उसे फिल्टर से देखते हैं मुझे। इसके लिए साधना का टाइम टेबल, वैराग, साधना, तपस्या, कहां पर हमारा मन फंसा हुआ है, अटका हुआ है, कहां पर अटेंशन की कमी है। आज भी वरदान में कहा है बार बार अटेंशन, पर ये टेंशन न बन जाए, जैसे सहज अटेंशन हो, जैसे वो सैनिक होते हैं वैसे। इसमें और एक बात बाबा ने कही है, साधनों के वशीभूत नहीं होना है। आज के युग में सबसे बड़ा साधन कौन सा है? मोबाइल। एक नया शब्द आया है, सेलफोन एडिक्शन, सेलफोन एडिक्शन। एक PEW अमेरिकन रिसर्च सेंटर है, उसने बहुत बड़ी इस पर रिसर्च किया है, PEW अमेरिकन रिसर्च सेंटर, सेलफोन एडिक्शन पर। जैसे ड्रिंकिंग के एडिक्शन होते हैं, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, व्यसन लत, उसी तरह सेलफोन एडिक्शन। और अभी तो पहले 2G 3G और अभी 4G आ रहा है। तो उसमें उन्होंने पाया कि लगभग एक फिगर उन्होंने निकाली, 67% अमेरिकन्स अपने फोन को तब देखते हैं टेक्स्ट के लिए, मैसेज के लिए, जब कोई रिंग भी नहीं बजती और ना ही वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट भी नहीं हुआ, रिंग भी नहीं बजी, फिर भी देखेंगे। उसके जैसे एडिक्शन के साइंस और सिम्टम्स होते हैं, लक्षण बीमारी के, उसी तरह जिनको इसका एडिक्शन है उसके भी लक्षण उसमें बताए हैं उस रिसर्च में। उठने के बाद 5 मिनट के अंदर देखने वाले 62%, ऐसे बहुत सारे फिगर निकाले। और फिर उससे ये भी कहा है कि कब समझा जाए कि मैं एडिक्टेड हूं, व्यक्ति कैसे जाने कि हमें एडिक्शन हो गया है। साइंस, सिम्टम्स और उसके इफेक्ट्स बताए हैं, फिजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, डिजिटल आई स्ट्रेन, टेक्स्ट नेक, एक नया शब्द है टेक्स्ट नेक, नेक स्प्रेन, इंसोम्निया, नींद ना आना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेटवर्क बंद हो तो डिप्रेशन सा छा जाता है एक। तो ये यहां का जाम हो जाता है। 4G फास्टर कनेक्शन चाहिए सबको। तो वो साधन जो है वो बाबा ने कहा जितना आवश्यक है उतना यूज करो। आवश्यक तो है, यूज तो करना है, क्योंकि आज सेवाएं कहो, ज्ञान योग कहो, बहुत फायदा होता है उससे, परंतु वो एडिक्शन ना बन जाए, वो अगर विड्रॉ हो जाए, चला जाए, तो कोई बेचैनी ना हो, एंग्जाइटी ना हो। स्क्रीन टाइम, नया शब्द है, स्क्रीन टाइम कितना है, तो जो भी साधन है उसमें मोबाइल एक या और कोई दूसरा साधन अगर है ऐसा ही, जिस पर हम निर्भर हो गए, डिपेंडेंस हो गया है, उसको चेक करना है, क्योंकि हम साधक हैं, साधना करने वाले हैं। अभी अभी हम इसके बारे में सोच रहे थे तो हमारे मन में एक टॉपिक आया है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो हम कल के लिए दे रहे हैं। किसको दें अब? सुशील भाई के लिए। कल मनसा सेवा का नहीं पढ़ेंगे ये टॉपिक, 4G कनेक्टिविटी, ब्रह्मा बाबा और 4G कनेक्टिविटी, 4G, 4G कनेक्टिविटी। तो 4G में 1G आपको बता देते हैं, वैसे दूसरे जी आप तैयार कर सकते हैं। 1G ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान गंगा जो भी कहो, तो उसके जीवन में 4G से कनेक्टिविटी कैसे थी। 1G तो बता दिया, ज्ञान जी से, बाकी 3G आप ढूंढिए। तो ब्रह्मा बाप और 4G कनेक्टिविटी, एक अच्छा टॉपिक है ये। तो साधनों के वशीभूत नहीं, साधनों के अधीन नहीं, साधनों पर इतना निर्भर नहीं कि वो जब नहीं है तब साधना ही बंद हो जाए। साधना और साधन, साधना और साधन, उसमें बहुत सारी बाकी चीजें भी आ सकती है। ये सोचे कि ये चीज कल नहीं रहेगी तो क्या हम अडोल रह सकते हैं? साधनों के भी और व्यक्तियों के भी, ये व्यक्ति कल नहीं रहेगा तो क्या हमारी साधना वैसी ही रहेगी जैसी अब है? ये वस्तु, ये पदार्थ, ये स्थान कल नहीं रहेगी तो क्या हमारी साधना वैसी रहेगी? मन में किसी, कहीं ना कहीं किसी कोने में एक डिपेंडेंस हो गया है उसके ऊपर, सूक्ष्म डिपेंडेंस, हमें भी नहीं पता वो, परंतु मन के किसी कोने में वो बैठा है। और इससे मुक्त होने की विधि है चेक करना। वो चेक करते करते ही उससे अनासक्ति, उससे डिटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है। किसी पर भी डिपेंडेंस नहीं, कोई भी चीज पर नहीं, किसी भी स्थान पर नहीं, कोई डिपार्टमेंट पर नहीं, कोई पर्टिकुलर सेवा पर भी नहीं कि ये सेवा मिले तो साधना अच्छी, इस तरह की दिनचर्या हो। अगर उसमें कोई थोड़ा भी खलल कुछ भी डालता है तो डिस्टर्बेंस, ये भी ना, अचानक कहीं पर भी जाना पड़े, कहां पर भी कुछ करना पड़े तो भी तुरंत स्वयं को मोल्ड कर लेना। वैराग, तपस्या और साधना, इन 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना, उसका वायुमंडल बनाना। उसका वायुमंडल फैलेगा तब जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो, हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा हो ये सारी चीजें, तो ही हम इसको फैला सकते। ये कोई संसार वाली चीजें नहीं है जिसको फैला दे, ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं, वृत्ति वृत्ति से बदलती है, वृत्ति से वृत्ति में धारण हो तो ये फैलेगी, नहीं तो नहीं बदलती, नहीं तो नहीं फैलती। तो ये 3 बातें और डिपेंडेंस, किस बात पर डिपेंडेंस है, किस किस बात का एडिक्शन है, उसकी अपनी एक लिस्ट बनानी है। सोचना है कि मैं किसी पर निर्भर तो नहीं हूं, हमारी खुशी, हमारे खुशी का रिमोट किसी और के जेब में तो नहीं है, उसने उधर से दबाया खुश तो खुश, उसने इधर से दबाया दुखी तो हम दुखी। तो इस पथ पर हर एक अकेला है, यहाँ डिपेंडेंस, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी घनिष्ठ हो, कितना भी नजदीक का हो, कितना भी स्नेही हो, कितना भी सहयोगी हो, हर मुरलियों में कितनी बार आता है, एक पाप दूसरा ना कोई, हजारों बार हमने सुना है ये। किसी पर भी डिपेंडेंस नहीं, किसी पर भी नहीं, भक्ति की किसी बात पर भी नहीं, भक्ति के किसी संस्कार पर भी नहीं। मांगना, किसी से भी मांगना, कुछ भी मांगना, सहज मिल जाए तो अच्छा, परंतु मांगना, यहां तक कि जानकी दादी का एक क्लास है जिसमें कहा था दादी ने कि बाबा को यह आश्रम शब्द भी पसंद नहीं था, जो आज भी कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम, बहनें भी कहती है काफी कि हमारे आश्रम में, परंतु बाबा को यह शब्द पसंद नहीं था, आश्रम शब्द पसंद नहीं था, बाबा कहते हैं भक्ति का शब्द है, सेंटर बोलो। तो उससे भी, उस पर भी डिपेंडेंस नहीं, मन के सूक्ष्म तलों पर मन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट, निर्भर हो जाता है, ऐसी निराधार अवस्था मन की, केवल एक आधार, उस एक आधार के लिए कितनी प्राप्तियों की अनुभूति अंदर होनी चाहिए, स्वयं के अंदर, कुछ भी अप्राप्त नहीं है मुझे, सब मिल गया, यह अनुभव किसका है आज सदन। तो ऐसी स्थिति अपने अंदर लानी है। आज 16 तारीख, 17 और 18, आज पूरा दिन, कल पूरा दिन और परसों पूरा दिन, तीन दिन है हमारे पास, तीन दिन तपस्या के दिन हो, साधना के दिन हो, वैराग वृत्ति के दिन हो। ओम शांति।